अध्याय 21 नाबोत की दाखबारी। यिज्रेली नाबोत की एक दाखबारी थी जो समारिया के राजा अहाब के महल से लगी हुई थी। अहाब ने किसी दिन नाबोत से कहा, अपनी दाखबारी मुझे दे दो, मैं उसे सब्जी का बाग बनाना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे महल से लगी हुई है। मैं उसके बदले तुम्हें उससे अच्छी दाखबारी दे दूंगा, या यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका मूल्य चुका दूंगा। किंतु नाबोत ने अहाब से कहा, ईश्वर ये न होने दे कि मैं आपको अपने पुरखों की विरासत दे दूं। अहाब उदास और क्रुद्ध होकर अपने घर चला गया, क्योंकि यिज्रेली नाबोत ने उससे कहा था, मैं तुम्हें अपने पुरखों की विरासत नहीं दूंगा। उसने अपने पलंग पर लेटकर मुंह फेर लिया और भोजन करने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, आप क्यों उदास हैं और भोजन करना नहीं चाहते? उसने उत्तर दिया, मैंने यिज्रेली नाबोत से कहा, रुपया लेकर मुझे अपनी दाखबारी दो, या यदि तुम चाहो तो मैं उसके बदले तुमको एक दूसरी दाखबारी दे दूंगा। उसने उत्तर में कहा, मैं आपको अपनी दाखबारी नहीं दूंगा। इस पर उसकी पत्नी इजेबेल ने कहा, वाह, आप इज़राइल के कैसे राजा हैं, उठकर भोजन करें और प्रसन्न हों, मैं आपको इज़राइली नाबोत की दाखबारी दिलाऊंगी। उसने अहाब के नाम से पत्र लिखे, उन पर उसकी मोहर लगाई और उन्हें नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों के पास भेज दिया। उसने पत्रों में ये लिखा, उपवास घोषित करो और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाओ। तब उसके सामने दो गुंडों को बैठा दो जो उस पर अभियोग लगाएं कि उसने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। इसके बाद उसे नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मरवा डालो। नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों ने इजेबेल के उस आदेश का पालन किया जो उनके पास भेजे हुए इजेबेल के पत्रों में लिखा हुआ था। उन्होंने उपवास घोषित किया और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाया। इसके बाद दो गुंडे आए, नाबोत के सामने बैठ गए और ये कहते हुए लोगों की सभा में नाबोत के विरुद्ध साक्ष्य देने लगे, नाबोत ने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। लोगों ने नाबोत को नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मारा और वो मर गया। इसके बाद उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा, नाबोत को पत्थरों से मारा गया और उसका देहांत हो गया है। इजेबेल ने जो ही सुना कि नाबोत पत्थरों से मार डाला गया है, वो अहाब से बोली, उठिए और इज़राइली नाबोत की दाखबारी को अपने अधिकार में कर लीजिए। जो नाबोत दाम लेकर आपको अपनी दाखबारी नहीं देना चाहता था, वो अब जीवित नहीं रहा, वो मर चुका है। ये सुनकर कि नाबोत मर चुका है, अहाब तुरंत इज़राइली नाबोत की दाखबारी को अपने अधिकार में करने के लिए चल पड़ा। एलिय्याह और अहाब। इसके बाद तिशबी एलिय्याह को प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, समारिया में रहने वाले इज़राइल के राजा अहाब से मिलने जाओ, वो नाबोत की दाखबारी में है, वो उसे अपने अधिकार में करने के लिए वहां गया है। उससे कहो, प्रभु ये कहता है, क्या तुम नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? इसके बाद उससे कहो, प्रभु ये कहता है, जहां कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा, वहां वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। अहाब ने एलिय्याह से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूं, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है, तुमने वही करने का निश्चय किया है, इसलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। अहाब के घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इज़राइल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा, चाहे वे दास हों चाहे स्वतंत्र। मैंने नबाट के पुत्र यरोबाम के घराने और अहिया के पुत्र बाशा के घराने के साथ जो किया है वही तुम्हारे घराने के साथ करूंगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया और इज़राइल से पाप कराया है। इजेबेल के विषय में प्रभु ये कहता है, यिज़रेल की चार दीवारी के पास कुत्ते इजेबेल को खाएंगे। अहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा वो कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा वो आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। अहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे ही करने का निश्चय किया हो, क्योंकि उसकी पत्नी इजेबेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमोरियों को इसराइलियों के सामने से भगा दिया, अहाब ने उन्हीं की तरह देव मूर्तियों का अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। अहाब ने ये शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वो टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु की वाणी तिशबी एलियाह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, क्या तुमने देखा है कि अहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? क्योंकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया, इसलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा, मैं उसके पुत्र के राज्यकाल में उसके घराने पर विपत्ति ढाऊंगा।